नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरलम और तमिलनाडु में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार के शुरू किए गए अवसंरचना विकास कार्यक्रमों से स्थानीय लोगों के लिए संपर्क सुविधा में सुधार होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। श्री मोदी ने तिरुचिरापल्ली के पंजपुर में एक कार्यक्रम में तमिलनाडु में 5,650 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने दो अमृत भारत एक्सप्रेस, दो नियमित एक्सप्रेस और एक यात्री रेलगाड़ी सहित 5 नई रेलगाड़ियों को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य एक विकसित तमिलनाडु बनाना है, इससे एक विकसित राष्ट्र का निर्माण होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होगा।
दिस प्रोजेक्ट आर अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्लीन एनर्जी, पेट्रोलियम रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, हाईवे, रेलवे एंड रूरल रोड। दे विल बूस्ट एनर्जी एक्सेस कनेक्टिविटी एंड क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ जॉब फॉर द यूथ ऑफ तमिलनाडु।
नई रेल सेवाओं की शुरुआत पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि ये रेल सेवाएं संपर्क, पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और युवाओं के लिए अवसरों को मजबूत करेगी। इससे पहले केरलम के कोच्चि में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में संकट हमें आत्मनिर्भरता के महत्व का बोध कराता है।
एनर्जी सेक्टर में हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर कम से कम हो, इसके लिए बीते सालों से लगातार कदम उठाए गए। भारत ने अपनी सोलर पावर कैपेसिटी बढ़ाई है। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम हो, इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बसों और अन्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बल दिया जा रहा है। रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने एर्नाकुलम में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की कोच्चि रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलीन इकाई की आधारशिला रखी। लोकसभा ने अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने की मांग वाले विपक्ष के प्रस्ताव को आज ध्वनिमत से खारिज कर दिया। प्रस्ताव पर हुए चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की निष्ठा पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लगभग 4 दशक के बाद लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। श्री शाह ने कहा कि यह संसदीय राजनीति और सदन दोनों के लिए खेदजनक है। पश्चिम एशिया संघर्ष का आज 12वां दिन है। पिछले कुछ घंटों में अब तक के सबसे बड़े हमले हुए हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री सुरक्षा को लेकर अमेरिका ने कहा है कि उसकी सेना ने 16 ईरानी नौकाओं को नष्ट कर दिया। इससे पहले बताया जा रहा था कि ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक को अवरुद्ध करने के लिए विस्फोटक उपकरण तैनात करना शुरू कर दिया है। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि हमले में कथित तौर पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल संरचना और ड्रोन उत्पादन केंद्रों को निशाना बनाया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित है और देश के कच्चे तेल के आयात का लगभग 70% हिस्सा अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर से आ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से घरेलू एलपीजी उत्पादन 25% बढ़ गया है। इस बीच भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नागरिकों को आश्वासन दिया है कि सरकार खाने पकाने की गैस के आयात को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उधर रोमानिया ने पश्चिम एशिया में अमेरिका द्वारा अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने और नेटो देश के हवाई अड्डों का उपयोग करने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। हैदराबाद में महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर में भारत ने वेल्स को 4-1 से हरा दिया है। नवनीत कौर ने भारत की ओर से 3 गोल किए। नई दिल्ली में आज विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता में सुमित अंतिल, प्रवीण कुमार और मरियप्पन थांगवेलु सहित शीर्ष पैरा एथलीट भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।